नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, फ्रीकोनॉमिक्स रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड एडिशन, अर्थशास्त्री स्टीवन लेविट और पत्रकार स्टीफन जे डबनर की लोकप्रिय गैर कथा पुस्तक है। यह शेयर बाजार, बजट या सकल घरेलू उत्पाद के पारंपरिक अर्थशास्त्र से अलग रास्ता अपनाती है। इसका विषय रोजमर्रा के व्यवहार के पीछे काम करने वाले प्रोत्साहन, सूचना और छिपे हुए संबंध है। लेखक स्कूलों में नकल, रियल एस्टेट, अपराध, पालन पोषण, नशीले पदार्थों के गिरोह और नामकरण जैसे अलग दिखने वाले विषयों को आंकड़ों के सहारे जांचते हैं। पुस्तक का उद्देश्य तैयार नैतिक निष्कर्ष देना नहीं, बल्कि ऐसे प्रश्न पूछना है जिन्हें सामान्यतः लोग पूछते नहीं है। इसका केंद्रीय विचार है कि लोग आर्थिक लाभ, सामाजिक दबाव और नैतिक भावनाओं सहित अनेक प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया देते हैं। संशोधित और विस्तारित संस्करण में मूल निबंधों के साथ बाद की सामग्री भी जोड़ी गई है। पुस्तक की शैली शोध आधारित लोकप्रिय लेखन की है, जहां लेविट का अनुभवजन्य विश्लेषण डबनर की स्पष्ट संवादात्मक भाषा से जुड़ता है। यह पाठक को सहसंबंध, कारण और सामान्य धारणाओं के बीच फर्क करने के लिए उकसाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रोत्साहन व्यवहार की दिशा बदलते हैं, पर उनका असर हमेशा सीधा नहीं होता। फ्रीकोनॉमिक्स का सबसे स्थायी विचार यह है कि अर्थशास्त्र मूलतः प्रोत्साहनों का अध्ययन है। लोग जो चाहते हैं उसे पाने के लिए वे नियमों, अवसरों और दंडों के अनुसार अपना व्यवहार बदलते हैं। लेखक प्रोत्साहनों को केवल पैसे तक सीमित नहीं रखते। आर्थिक प्रोत्साहन में बोनस, कीमत और जुर्माना आते हैं। सामाजिक प्रोत्साहन में प्रतिष्ठा, शर्म और साथियों की राय शामिल है। नैतिक प्रोत्साहन में अपराध बोध, कर्तव्य और परोपकार की भूमिका होती है। पुस्तक दिखाती है कि किसी व्यवस्था का घोषित उद्देश्य और उसमें लोगों के वास्तविक हित अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, परीक्षा परिणाम पर अत्यधिक दबाव शिक्षक को बेहतर पढ़ाने के बजाय परिणाम में हेरफेर की ओर भी धकेल सकता है। इसलिए किसी नीति का मूल्यांकन उसके इरादे से नहीं, लोगों के वास्तविक प्रत्युत्तर से होना चाहिए। लेखक का तर्क यह नहीं कि हर व्यक्ति स्वार्थी या अनैतिक है, बल्कि यह है कि परिस्थितियां व्यवहार के लिए लागत और लाभ बदल देती हैं। एक खराब ढंग से बनाया गया जुर्माना सामाजिक जिम्मेदारी को कीमत चुकाने योग्य सुविधा में बदल सकता है। यह दृष्टि प्रबंधन, सार्वजनिक नीति और संस्थागत डिजाइन में उपयोगी है, क्योंकि वहां नियम बनाने से पहले संभावित प्रतिक्रियाओं को समझना आवश्यक होता है। दूसरा, सूचना की असमानता विशेषज्ञता को सेवा और स्वार्थ दोनों का साधन बनाती है। पुस्तक का दूसरा प्रमुख ढांचा सूचना की असमानता है। यह वह स्थिति है जिसमें लेन देन के एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष से अधिक या बेहतर जानकारी होती है। फ्रीकोनॉमिक्स रियल एस्टेट एजेंटों और कू क्लक्स क्लैन के उदाहरणों के माध्यम से बताती है कि सूचना केवल ज्ञान नहीं, शक्ति भी हो सकती है। रियल एस्टेट एजेंट बाजार, कीमत और बिक्री की प्रक्रिया को ग्राहक से अधिक जानते हैं। उनका कमीशन ढांचा उन्हें तेज बिक्री के लिए प्रेरित कर सकता है, भले ही ग्राहक थोड़ी प्रतीक्षा से बेहतर मूल्य पा सकता हो। यहां मुद्दा किसी व्यक्ति की नैतिकता का सरल फैसला नहीं है। मुद्दा यह है कि भुगतान की संरचना और जानकारी का अंतर हितों को कैसे अलग करता है। कू क्लक्स क्लैन के संदर्भ में संगठन की गोपनीयता और उसके संकेतों की जानकारी उसके डर और प्रभाव का हिस्सा थी। जब उस जानकारी को सार्वजनिक किया गया तो उसकी शक्ति कमजोर हुई। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत है कि उपभोक्ता विशेषज्ञ सलाह को अंधविश्वास से न लें। वे हितों के टकराव, पारिश्रमिक की व्यवस्था और स्वतंत्र तुलना पर ध्यान दें। संस्थाओं के लिए सबक यह है कि पारदर्शिता, तुलनीय सूचना और जवाबदेही केवल नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि बाजार और निर्णयों को बेहतर बनाने के उपकरण है। तीसरा, आंकड़े चौंकाने वाले संबंध दिखाते हैं, लेकिन कारण साबित करने की कसौटी अलग है। लेविट और डबनर की पद्धति बड़े आंकड़ा समूहों से एक साधारण लेकिन अनदेखा प्रश्न निकालने पर आधारित है। वे परिचित कथाओं के बजाय मापने योग्य प्रमाण खोजते हैं। यह तरीका इसलिए प्रभावी है क्योंकि सार्वजनिक बहस अक्सर भावनात्मक घटनाओं, सुर्खियों और सहज अनुमान पर चलती है। पुस्तक अपराध दर, शिक्षा और परिवार जैसे विषयों में उन कारकों को देखने का प्रयास करती है जो पहली नजर में मुख्य कारण नहीं लगते, लेकिन पुस्तक को पढ़ने का सही तरीका उसके हर निष्कर्ष को अंतिम सत्य मानना नहीं है। ओ उनते हाँ, वो अकोले खरी तुक का खोट तुझे सरकर वो तातरिस आखर सरिन की मच खोस देखने का दिस। आंकड़ों में सहसंबंध मिलना और एक कारक के कारण दूसरा परिणाम होना अलग बातें हैं। कारण संबंध स्थापित करने के लिए वैकल्पिक व्याख्याओं, समय क्रम, तुलना समूहों और मापन की सीमाओं की जांच जरूरी है। अपराध में गिरावट और गर्भपात के वैधीकरण के संबंध वाला चर्चित अध्याय इसी कारण तीखी बहस का विषय बना। इस उदाहरण का बौद्धिक महत्व केवल उसका निष्कर्ष नहीं, बल्कि यह प्रश्न है कि दूरस्थ सामाजिक परिवर्तनों के दीर्घकालिक परिणामों को कैसे मापा जाए। पुस्तक पाठक को दो उपयोगी आदतें देती है। पहली, किसी लोकप्रिय दावे के पीछे उपलब्ध आंकड़ों के बारे में पूछना। दूसरी, किसी आकर्षक संबंध को सुनकर तुरंत कारण मान लेने से बचना। यही सावधानी पुस्तक की उत्तेजक शैली को गंभीर विश्लेषण से जोड़ती है। चौथा, क्रेग गिरोह का विश्लेषण अवैध बाजार में भी पदानुक्रम और टूर्नामेंट को दिखाता है। फ्रीकोनॉमिक्स के सबसे यादगार अध्यायों में क्रैक कोकीन गिरोह की आर्थिक संरचना का विश्लेषण है। आम धारणा यह हो सकती है कि सड़क स्तर का नशीला पदार्थ विक्रेता बहुत धन कमाता है। लेखक गिरोह के वित्तीय अभिलेखों के आधार पर इससे अलग तस्वीर रखते हैं। निचले स्तर के कर्मचारियों की आय कम थी और जोखिम अत्यधिक था, इसलिए उनमें से कई परिवार के साथ रहते थे। इस विरोधाभास को समझाने के लिए पुस्तक टूर्नामेंट मॉडल का उपयोग करती है। ऐसी व्यवस्था में बहुत से लोग कम आय और कठिन परिस्थितियां स्वीकार करते हैं, क्योंकि कुछ शीर्ष स्थानों पर असाधारण कमाई की संभावना दिखाई देती है। यह संरचना अभिनय, पेशेवर खेल और अन्य अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों से मिलती है। शीर्ष पर पहुंचने की दुर्लभ संभावना नीचे के स्तर पर टिके रहने का आकर्षण पैदा करती है। यह विश्लेषण अपराध को उचित नहीं ठहराता। इसका उद्देश्य नैतिक निंदा से आगे जाकर उस संगठनात्मक तर्क को समझना है जो खतरनाक बाजार को चलाता है। इससे नीति का प्रश्न बदलता है। केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं कि लोग अपराध क्यों करते हैं, यह भी देखना होगा कि भर्ती, पदोन्नति, प्रतिष्ठा, जोखिम और आय की व्यवस्था किस तरह विकल्पों को आकार देती है। पुस्तक इस प्रकार दिखाती है कि अवैध संगठन भी प्रोत्साहन, सूचना और पदानुक्रम के नियमों से मुक्त नहीं होते। अंत में, पालन पोषण और सामाजिक पहचान के दावों में परिणाम, चयन और प्रतीक को अलग करना जरूरी है। पुस्तक पालन पोषण और बच्चों की उपलब्धि पर भी सामान्य विश्वासों की जांच करती है। लेखक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अंतर उभारते हैं कि माता पिता कौन हैं और वे कौन सी दिखाई देने वाली गतिविधियां करते हैं। शिक्षा, आय, सामाजिक परिवेश और पारिवारिक विशेषताएं बच्चों के परीक्षा परिणामों से मजबूत संबंध रख सकती हैं। इसके विपरीत, कुछ लोकप्रिय पालन पोषण आदतों का स्वतंत्र मापने योग्य प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं मिलता। इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चों को पढ़ना सुनाना, उनसे बात करना या उनके लिए समय देना निरर्थक है। अधिक सावधान निष्कर्ष यह है कि अच्छी आदतें अक्सर उन परिवारों का संकेत भी हो सकती हैं जिनके पास पहले से संसाधन और शैक्षिक लाभ हैं। इसलिए प्रतीक और कारण को अलग करना जरूरी है। नामों पर चर्चा भी इसी बिंदु को आगे बढ़ाती है। किसी नाम का सामाजिक वर्ग, संस्कृति या माता पिता की पसंद से संबंध हो सकता है, पर नाम अपने आप बच्चे के भविष्य का सरल कारण नहीं बन जाता। यह अध्याय पाठक को परिणामों के पीछे छिपे चयन प्रभाव पर विचार करना सिखाता है। शिक्षा और पालन पोषण पर बहस में यह उपयोगी सुधार है, क्योंकि इससे सरल नुस्खों के बजाय असमान अवसरों, पारिवारिक परिस्थितियों और दीर्घकालिक परिवेश की भूमिका पर ध्यान जाता है। निष्कर्ष में, फ्रीकोनॉमिक्स उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो अर्थशास्त्र को केवल वित्त, बाजार या सरकारी आंकड़ों का विषय नहीं मानना चाहते। नीति, व्यवसाय, शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक, विज्ञान और डेटा विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों को इसमें विशेष उपयोग मिलेगा। इसकी व्यावहारिक देन किसी एक क्षेत्र के लिए तैयार समाधान नहीं है। इसके बजाय यह प्रश्न बनाने की कला सिखाती है। कौन सा प्रोत्साहन व्यवहार बदल रहा है? किसके पास अधिक जानकारी है? दिखने वाला संबंध वास्तव में कारण है या नहीं? और किसी व्यवस्था में लाभ किसे मिलता है? ये प्रश्न रोजमर्रा के निर्णयों को अधिक स्पष्ट बना सकते हैं। एक टिगवी पर एक एनलोमरी एंथ दो कर मबले सखित और महापुखौले दो तन उबर एनरियोलमा भी गला रिस एंकर। समान लोकप्रिय अर्थशास्त्र पुस्तकों की तुलना में इसका अलगपन विषयों की असामान्य पसंद और शोध को कहानी की तरह प्रस्तुत करने में है। स्कूल शिक्षक, सुमो पहलवान, रियल एस्टेट एजेंट, अपराध और परिवार जैसे विषय एक ही अनुशासन में रखकर यह दिखाती है कि आर्थिक सोच का दायरा व्यापक है। फिर भी इसे अंतिम निर्णयों की पुस्तक की जगह जांच की शुरुआत मानकर पढ़ना बेहतर है। विशेष रूप से विवादास्पद निष्कर्षों के मामले में पाठक को डेटा की सीमा, वैकल्पिक कारणों और बाद की आलोचनाओं पर विचार करना चाहिए। यही आलोचनात्मक दूरी पुस्तक से मिलने वाला सबसे उपयोगी लाभ है। यह पाठक को हर चौंकाने वाले आंकड़े पर विश्वास करना नहीं, बल्कि उसके पीछे की विधि, तुलना और प्रोत्साहन संरचना पूछना सिखाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं स्टीवन लेविट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।